ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 219। हे रामचंद्र जी, मंत्री ने जब राजा से सारा वृत्तांत कहा तब राजा ने ऐसे विचारा और वह उद्यत हुआ कि हमने समुद्र पर्यंत दिग्विजय की है और हमारी जय हुई है। अब चैत्य जो दृश्य है उस दृश्य विभूति को देखो। समुद्र के पार द्वीप है, फिर उस समुद्र के पार और द्वीप है, फिर समुद्र है और फिर द्वीप है। इसी प्रकार सात द्वीप और सात समुद्र है, पर उनके आगे क्या है? इस प्रकार सब दृश्य देखने की इच्छा करके उन्होंने अग्नि देवता का आवाहन किया। उनकी हृदय भावना से अग्नि देवता सम्मुख आकर स्थित हुए और बोले, हे राजन, जो कुछ तुमको कामना हो सो मांगो। राजा ने कहा, हे भगवन, ईश्वर की माया से पंचभौतिक दृश्य में जो प्राणी है उनको देखने की मेरी इच्छा है, उसे पूर्ण करो। हे देव, अब हम इसी शरीर से दृश्य देखने जावे और जब यह शरीर न चल सके तब मंत्र सत्ता से जावे, पर जहाँ मंत्र की भी गति नहीं वह सिद्धि से जावे, और जहाँ सिद्धि की भी गति नहीं वह मन के वेग से जावे और मृतक भी न हो, यह वर हमको दो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राजा ने कहा तब अग्नि देवता ने कहा कि ऐसा ही होगा। यों कहकर अग्नि अंतर्धान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लय हो जाती है वैसे ही अग्नि अंतर्धान हो गए। जब राजा विपश्चित वर पाकर चलने को उद्यत हुआ तब जितने मंत्री और मित्र थे वे रोने लगे और बोले, हे राजन, तुमने यह क्या निश्चय किया है? ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया, इसे तुम अपने स्थान को चलो। यह क्या तुमने निश्चय किया है? हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मंत्री कहते रहे परंतु राजा ने उनको आज्ञा देकर एक दिशा के समुद्र में प्रवेश किया। यो चारों दिशाओं में चारों राजाओं ने गमन किया। तब जो बड़े बड़े शक्तिशाली मंत्री थे वे साथ ही चले। तब राजा मंत्र शक्ति से समुद्र को लांग गया, कहीं पृथ्वी पर चला और कहीं ऊंचे चला, इसी प्रकार और द्वीप में जाकर निकला। तब बड़ा समुद्र आया, उसमें प्रवेश कर गया। उसमें बड़े तरंग उछलते थे और उसका 100 योजन तक विस्तार था, कभी नीचे और कभी ऊपर को जाते थे। हे रामचंद्र जी, ऐसे तरंग उछलते मानो पर्वत उछलते हो। जब वे ऊपर को उछलते तब स्वर्ग तक उछलने लगते और जब नीचे जाते तब पाताल पर्यंत चलते जान पड़ते। जैसे पानी में तरण फिरता है वैसे ही राजा फिरे। इस प्रकार कष्ट से रहित राजा समुद्र और दिशाओं को नांग गया, परंतु बीच में जो वृत्तांत हुआ सो भी तुम सुनो। क्षीर समुद्र में एक मच्छर रहता था जिसको सब देवता प्रणाम करते थे और जो विष्णु भगवान के मच्छ अवतार के परिवार में था। जब राजा ने क्षीर समुद्र में प्रवेश किया तब राजा को उसने मुख में डाल लिया, पर राजा मंत्र के बल से उसके मुख से निकल गया। आगे फिर एक मच्छ मिला, उसने भी उसे मुख में डाल लिया पर उससे भी वह निकल गया। फिर आगे पिशाचों का देश था, यह राजा को पिशाच ने काम से मोहित किया। फिर उसने दक्ष प्रजापति की कुछ अवज्ञा की जिससे उन्होंने शाप दिया और राजा वृक्ष हो गया। निदान कुछ काल वृक्ष रहकर फिर छूटा तो एक देश में मेंढक हुआ और 100 वर्षों तक खाई में पड़ा रहा। फिर उससे छूटकर मनुष्य हुआ। तब किसी सिद्ध के शाप से शिला हो गया और 100 वर्षों तक शिला ही रहा। उसके उपरांत अग्नि देवता ने शिला की योनि से छुड़ाया तो फिर वह मनुष्य हुआ। तब उस सिद्ध को आश्चर्य हुआ कि मेरे शाप को दूर करके यह मनुष्य क्यों कर हुआ, यह तो मुझसे भी बड़ा सिद्ध है। ऐसे जानकर उसने उसके साथ मैत्री की। इसी प्रकार दूसरे समुद्रों को भी यह नांगता गया। क्षीर समुद्र, खारी समुद्र और इक्षु रस के समुद्र को नांग कर द्वीपों को नांगता गया। फिर एक अप्सरा पर मोहित हुआ और बहुत काल में वहां से छूटा। फिर एक देश में पक्षी हुआ, बहुत काल तक पक्षी रहकर छूटा तो एक गोपी पिशाचिनी ने बैल बनाकर उसे रखा। तब दूसरे विपश्चित ने बैल विपश्चित को उपदेश करके जगाया। निदान हे रामचंद्र जी, चारों दिशाओं में चारों विपश्चित घूमते फिरे। दक्षिण दिशा का राजा तो पिशाचिनी से मोहित हुआ, इससे उसने बहुत जन्म पाए, और पूर्व का राजा बहता हुआ मच्छ के मुख में चला गया, उसने निकाल दिया, इससे उसने वह अवस्था देखी। उत्तर दिशा का जो राजा हुआ उसने वही अवस्था देखी। पश्चिम दिशा का हेमचू पक्षी की पीठ पर पहुंचा, उसने उसे कुश द्वीप में डाल दिया, इससे उसने भी अनेक अवस्था पाई। हे रामचंद्र जी, एक एक विपश्चित ने भिन्न भिन्न योनियों और अवस्थाओं का अनुभव किया। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि विपश्चित एक ही था और उन चारों के संविध भी एक ही थी, आकार भी एक ही सा था, तो भिन्न 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 रुचि कैसे हुई? जो एक पक्षी हुआ, दूसरा वृक्ष हुआ और वे वासना के अनुसार अनेक शरीर पाते फिरे। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसमें क्या आश्चर्य है? उनकी संवित एक ही थी, परंतु भ्रम से भिन्नता हो जाती है। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न होता है तो उसमें वह पशु पक्षी हो जाता है और भिन्न भिन्न रुचि भी हो जाती है, वैसे ही उसकी भी भिन्न भिन्न रुचि हो गई। जैसे देखो कि शरीर तो एक ही होता है, पर उसमें नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्वा और त्वचा की रुचि भिन्न भिन्न होती है और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, सो एक ही शरीर में अनेकता भासित होती है। वैसे ही उनकी एक ही संविद थी, परंतु संकल्प भिन्न भिन्न हो गया था। इससे मन के फुरने से एक देह में अनेक भासित हुई। जैसे एक ही योगेश्वर इच्छा करके और शरीर धर लेता है और एक से अनेक हो जाता है। एक सहस्त्र बाहु अर्जुन था, वह किसी भुजा से युद्ध करता था, किसी भुजा से दान करता था और किसी एक से लेता देता था। इसी प्रकार सब भुजाओं से वह चेष्टा करता था। वे भिन्न भिन्न हुए, एक ही शरीर में भिन्न भिन्न चेष्टा होती है। जैसे विष्णु भगवान कहीं दैत्यों के साथ युद्ध और कहीं कर्म करते हैं, कहीं लीला करते हैं और कहीं शयन करते हैं, सो संवित तो एक ही है, परंतु चेष्टा भिन्न भिन्न होती है। वैसे ही उनके सम्मित में अनेक रुचि हुए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उन्होंने जन्म से जन्मांतर को अविद्याकृत संसार में देखा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वे तो बोधवान विपश्चित थे और बोधवान जन्म नहीं पाता, फिर उनका किस प्रकार जन्म हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वे विपश्चित बोधवान न थे, परंतु बोध के निकट धारणा अभ्यास वाले थे। जो वे ज्ञानवान होते तो दृश्य भ्रम देखने की इच्छा क्यों करते। इससे वे ज्ञानवान न थे, धारणा के अभ्यासी थे। अतः समुद्र को नांग गए और मच्छर के उदर से बलपूर्वक निकल आए। वह प्रसिद्ध योग शक्ति है। ज्ञान का लक्षण स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। राजा विपश्चित ज्ञानवान न थे, इस कारण देश देशांतर में घूमते रहे और ज्ञान बिना अविद्याकृत संसार में जन्म मरण में भटकते रहे। राम जी ने पूछा, है भगवान, ज्ञानवान योगीश्वरों को भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान कैसे होता है। ज्ञानी योगी एक देश में स्थित हुआ सर्वत्र कर्मों को कैसे करता है, यह मुझसे आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञानी की बात यह मैंने तुमसे कही है। जितना जगत है सब चिदाकाश स्वरूप है। जिनको ऐसे सत्ता का ज्ञान हुआ है वे महापुरुष है। जैसे स्वप्न से कोई पुरुष जागे तो स्वप्न की सब सृष्टि उसे अपना ही रूप लगती है और उसमें वह नहीं बंधता। हे रामचंद्र जी, यह सब नानात्व भासता है, सो नाना नहीं और अनाना भी नहीं, केवल आत्मसत्ता जो कि त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने आप में स्थित है। ये तीनों काल भी ज्ञानवान को ब्रह्मरूप हो जाते हैं। सब जगत भी ब्रह्मरूप हो जाता है और उसका द्वैत भाव मिट जाता है। ऐसे ज्ञानवान को ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। जैसे अमृत को जो पीता है वही उसके स्वाद को जानता है और कोई नहीं जान सकता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तो तुल्य दिखती है, परंतु ज्ञानी का निश्चय कुछ और है और अज्ञानी का निश्चय और। जिसका हृदय शांत हुआ है वह ज्ञानवान है और जिसका हृदय त्रिताप से जलता है वह ज्ञानी है। वह बंधा हुआ है। ज्ञानवान का शरीर चूर्ण हो अथवा उसे राज्य प्राप्त हो तो भी उसको राग द्वेष नहीं उपजता। वह सदा ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वह जीवन मुक्त है, परंतु उसका यह लक्षण कोई नहीं जान सकता, वह आप ही जानता है। शरीर को दुख और सुख भी प्राप्त होता है। वह मरता और रुदन भी करता है, हंसता लेता और देता भी है और इस प्रकार की सब चेष्टा करता दिखता है, पर वह अपने निश्चय में न दुखी होता है न सुखी होता है, न देता है और न लेता है, सदा ज्यों का त्यों रहता है। हे रामचंद्र जी, व्यवहार तो उसका भी अज्ञानी के नहीं दिखता है, परंतु हृदय से उसका यही निश्चय होता है वह अद्भुत पद में स्थित रहता है, कभी उससे नहीं गिरता। उसका परम उदित रूप होता है, वह राग सहित भी दिखता है पर हृदय से राग किसी में नहीं करता। क्रोध करता भी दिखता है पर उसको क्रोध कभी नहीं होता। जैसे आकाश शुभ पदार्थ को धारण करता है और धुएं और बादल से ढका भी होता है पर किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवानों में सब क्रिया दिखती है पर अपने निश्चय में उसे कोई स्पर्श नहीं करते। जैसे नट स्वांग ले आता है और चेष्टा करता दिखता है पर हृदय से अपने नटत्व भाव में उसे निश्चय होता है, वैसे ही ज्ञानवान को भी सब क्रियाओं में अपने आत्मभाव का निश्चय होता है। जैसे जिसको स्वप्न आता है वह यदि स्वप्न भी अपना पूर्व रूप स्मरण रखता है तो स्वप्न के पदार्थ में बरतता है तो भी स्वप्न के सुख में अपने को सुखी और दुखी नहीं मानता। सब सृष्टि उसको अपना ही स्वरूप भासित होती है। वैसे ही ज्ञानवान को स्वरूप के निश्चय से सुख दुख का क्षोभ नहीं होता। जो ऐसे पुरुष है उनको दुख से कष्ट होता है, जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे ही सिद्धि होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, यह जितनी सृष्टि है सब चित सत्ता में है। योगेश्वर पुरुष उसी में स्थित होकर जहां पहुंचना चाहते हैं वहां अंतवाहक से जा पहुंचते हैं। तीनों काल उनको विद्यमान होते हैं, साधन कुछ नहीं, परंतु ज्ञानी अवश्य किसी काम के लिए यत्न नहीं करते, जैसा प्राप्त होता है उसी में वे प्रसन्न रहते हैं। हे रामचंद्र जी, एक समय ब्रह्मा जी ऊर्ध्वमुख से सामवेद का गायन करते थे। उन्होंने सदाशिव का मान न किया, तब सदाशिव ने अपने नख से ब्रह्मा का पांचवा शीश काट डाला, परंतु ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्रोध न फूरा। उन्होंने विचारा कि मैं चिदाकाश हूँ सो अब भी चिदाकाश हो, मेरा तो कुछ गया नहीं, सिर से मुझे क्या प्रयोजन है, न कुछ हानि है और न कुछ लाभ। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सब विश्व रचने वाले ब्रह्मा जी का सिर कटा। जो वे फिर सिर लगा लेते तो समर्थ थे, पर उनको सिर लगाने का कुछ प्रयोजन न था और न लगाने में कुछ हानि भी नहीं थी। उनका भी निश्चय सदा आत्मपद में है, इस कारण उन्हें कुछ क्षोभ न हुआ। हे रामचंद्र जी, काम के सदृश और कोई विकार नहीं है। जो सदाशिव पार्वती को बाह्य अंग में धारण करते हैं उन्होंने ही जिस कामदेव के पांच बाण चलने से सब विश्व मोहित होता है उसी काम को भस्म कर डाला, तो क्या स्त्री को वह छोड़ नहीं सकते थे? पर उनको राग द्वेष कुछ नहीं है, इस कारण त्याग नहीं करते। त्यागने से उन्हें कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं है और रखने से कुछ अनर्थ नहीं होता। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य होता है उसको करते हैं, खेद नहीं मानते, इसी से वे जीवन मुक्त है। विष्णु जी सदा विक्षेप में रहते हैं, आप भी कर्म करते हैं और लोगों से भी कराते हैं, शरीर धारण करते हैं और त्याग भी देते हैं, इत्यादि क्षोभ वह करते हैं। वह इसे त्यागने को समर्थ भी है, परंतु त्यागने में उनका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और करने में कुछ हानि नहीं होती। उनको लोग कई गुणों से युक्त सगुण जानते हैं। मुझको तो उनका शुद्ध चिदाकाश रूप ही भासित होता है। मूर्ख कहते हैं कि विष्णु श्याम सुंदर है, परंतु वे शुद्ध चिदाकाश रूप है और उनका उनको सदा शुद्ध स्वरूप में अहम प्रत्यय है। आकाश मार्ग में जो सूर्य स्थित है, वे कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं, तो क्या उनमें स्थिर होने का सामर्थ्य नहीं है? है, परंतु चलना और ठहरना दोनों उनके लिए समान है। वह खेत से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य करते हैं, इससे जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त चंद्रमा भी है। वह घटते घटते सूक्ष्म होते दिखते हैं और कभी बढ़ते जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष उनसे होते हैं। वह केवल रात्रि को प्रकाश करते हैं, तो क्या वे अपनी क्रिया को त्याग नहीं सकते? त्याग सकते हैं, परंतु क्षोभ से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य में विचरते हैं, इससे वे जीवन मुक्त हैं। अग्नि सदा दौड़ता रहता है और यज्ञ और होम की आहुतियां भोजन करने को सब ओर जाता है, तो क्या उसको ग्रह में बैठने की सामर्थ्यता नहीं है? अवश्य है, परंतु जो कुछ अपना आचार है उसको वह नहीं त्यागता, क्योंकि ठहरने में उसका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और चलने में कुछ हानि नहीं होती। दोनों में वह तुल्य रूप से जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, बृहस्पति और शुक्र को बड़ा क्षोभ रहता है। बृहस्पति देवताओं की जय के लिए यत्न करते हैं और शुक्र दैत्यों की जय के लिए यत्न करते रहते हैं, तो क्या इनको त्यागने की सामर्थ्यता नहीं है? परंतु दोनों इनको तुल्य है। इस कारण भेद से रहित होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं, इससे ये जीवन मुक्त पुरुष है। हे रामचंद्र जी, राज्य में बड़े क्षोभ होते हैं, पर राजा जनक आनंद सहित राज्य करते हैं और जीवन मुक्त है। प्रह्लाद, बलि, वृत्तासुर और मुर आदि दैत्य जीवन मुक्त हुए हैं। वे समता भाव को लिए खेत से रहित नाना प्रकार की चेष्टा करते और हृदय से शीत और जीवन मुक्त रहे हैं। राजा नल, दिलीप और मानधाता आदि ने भी समता भाव से राज्य किया है, वे भी जीवन मुक्त है। ऐसे ही अनेक राजा हुए हैं, उनमें रागवान भी देखे गए हैं, परंतु हृदय में राग द्वेष से रहित शांत चित्त थे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य होती है, परंतु भेद इतना ही है कि ज्ञानी का चित्त शांत और अज्ञानी का चित्त क्षोभ में होता है। अज्ञानी इष्ट की प्राप्ति में हर्षवान होता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करता है और ग्रहण त्याग की इच्छा से जलता रहता है, क्योंकि उसको संसार सत्य भासित होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसके भीतर न राग है न द्वेष। स्वाभाविक शरीर की जो प्रारब्ध होता है, उसमें उसे कुछ भी अपना अभिमान नहीं होता। उसके निश्चय में सब आकाश रूप है। जगत कुछ बना नहीं, भ्रम मात्र है। जैसे आकाश में नीलिमा भ्रम मात्र है और दूर नहीं होती, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है, परंतु है नहीं। जैसे आकाश में नाना प्रकार के तरुवर दिखे, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। जैसे काठ की पुतली काठ रूप होती है, वैसे ही यह जगत भ्रम रूप है। जो कुछ भ्रम से भिन्न भासता है, वह सब भविष्य नगर में असत्य है। और जो कुछ तुम्हें देख पड़ता है वह कुछ नहीं, केवल सब कलना से रहित, शुद्ध संवित, जड़ता बिना, मुक्त स्वभाव, एक अद्वैत आत्मसत्ता स्थित है। वह केवल आकाश रूप है, उसमें जगत भी वही रूप है। वह पाषाण की शिला सदृश ठोस और मौन है। तुम भी उसी रूप में स्थित हो जाओ। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।